ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की।
हरे कृष्ण। आज हम लोग स्कंद 5 के 26वें अध्याय के 25वें श्लोक पर है। नारकीय लोकों का वर्णन। ये जो पुरुष तू लेकिन इह इस जीवन में वही निसंदेह दाम्भिका संपत्ति तथा प्रतिष्ठा से गर्वित दंभ यज्ञेषु प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किए गए यज्ञ में पशु पशुओं को विष शांति मारते हैं तान उनको अमुष्मिन लोके अगले जगत में वैश्यसे वैश्यस या विशसन नरके नरक में पतितान गिरे हुए निरयपतयः यमराज के दूत यातयित्वा प्रचुर पीड़ा प्रदान करके विशसन्ति मार डालते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है उसे मृत्यु के पश्चात वैशसन नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। तात्पर्य भगवद गीता 6.41 में श्री कृष्ण कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक सुख भोग कर सदाचारी ब्राह्मणों और धनवानों के प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म पाकर उसे चाहिए कि भक्ति योग को परिपूर्ण बनाए, किंतु कुसंग के कारण वह प्रायः भूल जाता है कि भगवान श्री भगवान ने ही उसे यह प्रतिष्ठित पद प्रदान किया है। वह अनेक प्रकार के तथाकथित यज्ञ यथाकाली पूजा या दुर्गा पूजा करके इसका दुरुपयोग करता है और निरीह पशुओं की बलि चढ़ाता है। ऐसे पुरुष को किस प्रकार दंडित किया जाता है उसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। इस श्लोक का एक शब्द दंभ यज्ञेषु महत्वपूर्ण है। यदि यज्ञ करते समय वैदिक शिक्षाओं का पालन नहीं किया जाता और वे केवल दिखावे के लिए पशुओं की बलि और केवल दिखावे के लिए पशुओं की बलि की जाती है तो वह मृत्यु के उपरांत दंड का भागी है। कलकत्ता में ऐसे अनेक कसाई घर हैं जहां ऐसा मांस बिकता है जो देवी काली पर बलि चढ़ा होता है। शास्त्रों का मत है कि मांस में महीने में एक बार देवी काली को छोटे बकरे की बलि दी जा सकती है। यह कहीं नहीं उल्लिखित है कि मंदिर पूजा के बहाने कसाई घर चलाया जाए और व्यथा ही पुरुषों का वध किया जाए। जो ऐसा करते हैं उन्हें दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि यहां पर वर्णित है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भागवतम के इस अध्याय में नारकीय लोगों का वर्णन है और इस श्लोक में ये बताया गया कि जो व्यक्ति अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है उसे मृत्यु के पश्चात वैशेषण नामक नरक में रखा जाता है और जहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। भगवद गीता में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये आया कि मद क्या चीज है। निर्मान मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम दंदे विमुक्तेर सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद अव्ययम तत्। निर्मान मोह बगैर मान के बगैर मद के कि मेरा ये पद है मेरा ये सम्मान है मेरा मान है। निर्मान मोह और मोह से जो ये हमारा अटैचमेंट है मोह से मुक्ति। निर्मान जीत संग दोषा और जिसने जीत लिया है ये जो इस दुनिया के वर्ल्डली सांसारिक जो हमारे एसोसिएशन है संग दोषा अध्यात्म नित्य जो भगवान जो इटर्नल है नित्य है उनकी उनको उनसे अपना संबंध बना लिया है और विनिर्मुक्त काम और वो काम से लस्ट से अपने इंद्रियों की तृप्ति से मुक्त है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग और द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व क्या है सुख दुख मान अपमान यश अपयश लाभ हानि इन सब से वो मुक्त है। सुख दुख संग है, और सुख और दुख में वो एक जैसा है, न सुख में सुखी न दुख में दुखी। गच्छन्ति, जाता है ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव अमूढ़ा, पूरी नॉलेज में, मूढ़ा मतलब मूर्खों की तरह और अमूढ़ा मतलब पूरी ज्ञान में, पूरे ज्ञान के साथ। पदम परम, पद पद परम तक, परम पद की प्राप्ति करता है। तो जो ये मोह है, ये जो अटैचमेंट है, इंद्रियों की तृप्ति की इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, इनसे मुक्त होकर मनुष्य परम पद की प्राप्ति करता है। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुवा अमानी नाम मान देना कीर्तन। मान, ये मद, ये हम लोगों को दूसरों को सम्मान देना है लेकिन अपने सम्मान की कोई इच्छा नहीं, ऐसा जीवन। और महारानी कुंती की जो प्रेयर्स हैं उसमें भी इस तरह की चीजें आई हैं कि जो लोग मोह और मद से परे हैं भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि तो कुंती महारानी ने बहुत दुख उठाए हैं लेकिन भगवान को कभी नहीं भूली, और वो याद कर रही हैं कि जब भीम को जहर दिया, दुर्वासा मुनि आए, द्रौपदी का चीरण होने से आपने बचाया, बड़े बड़े योद्धा युद्ध में थे महाभारत के, आपने सब से हमें बचाया, और आज जब हम युद्ध जीत चुके हैं, युधिष्ठिर को राज्य मिल चुका है, आप हमें छोड़ के जा रहे हो, तो भागवतम के कैंटो स्कंद वन के पहले स्कंद के आठवें चैप्टर के ये कुछ श्लोक हैं जो महारानी कुंती ने भगवान के जाने के समय उनको बोला। तो उसमें ये है कि विपदा संतु तत्सात्पद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन, जब भी वो जो जो दुख हमें, जो मुसीबतें हमारे ऊपर आई, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि वो दुख हमें दोबारा बार बार मिले। ऐसी ऐसी महान स्तुति भगवान की शायद ही किसी ने की हो कि हमें दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब हमें दुख होते हैं हम आपको याद करते हैं, और आपको याद करने से आपका दर्शन हमें होता है, और आपके दर्शन से पुनर्जन्म का अपुनर्भव दर्शनम, पुनर्भव दोबारे आने का जो है वो दुख हमें प्राप्त नहीं होता, हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। अब ये जो वर्ष यहाँ पे है, मान की बात यहाँ, प्राइड की बात आई है, दंभ की बात आई है। जन्म ऐश्वर्य श्रुता वेद मान मदापमान न वर्ति अभ्युदा तुम वही त्वाम किंचर गोचरम। अब इस श्लोक में ये जो कनेक्शन है, जो संबंध है कि मान मद और अपने पद से मोह, पद से, पद का गर्व, घमंड पद का, और पशुओं की बलि, ये दो चीजें, तो जानवरों की हत्या उन्हें खाने के लिए या एक यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए, और दूसरे पद का घमंड, इन दोनों का क्या संबंध है? तो यही है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर, जन्म के बहुत ऐश्वर्य वाले बड़े घर में जन्म, जहां पैसा ही पैसा, और श्रुता, श्रुता मतलब बहुत पढ़ाई की हुई है, बहुत नॉलेज है, और शिविर ब्यूटी सुंदरता, एद माना मदापमान, और ये जो चीजें हैं इससे आदमी घमंड में, मद में हो जाता है, पुमान लोग न वहरदी अभिदा तुम वही तम अकिंचन गोचर, आप अकिंचन गोचर, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई भी साथी नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है, जिसके पास धन भी नहीं है, धन भी इतनी बात नहीं है, शरीर भी नहीं है, धन बहुत है लेकिन शरीर काम नहीं करता, तो वो भी अकिंचन है। वो भगवान जो है, वो भगवान अकिंचन, जो दीनों के दीनानाथ, और जो लोग घमंड में है जो लोग इन माया के जाल में फंसे हुए हैं, उनको आपके बारे में ज्ञान नहीं। नमो किंचन वित्ताय निर्वित्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यापतये नमः। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कुंती महारानी कह रही हैं, क्योंकि आप जो है ना प्रॉपर्टी हैं, आप संपत्ति हैं। किसकी संपत्ति हैं? अकिंचन वित्ताय, जिसके पास में जो मेटेरियली इम्पॉवरिश्ड है, इम्पॉवरिश्ड मतलब जिनके पास में धन का अभाव है, जिनके पास में रहने को घर नहीं खा, आप उनकी। और वो लोग आपको बार बार याद करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपकी कथाओं का गुणगान करते हैं। तो कुंती महारानी की प्रेयर ऐसे ही, सुदामा की भी, सुदामा विप्रा, जब वो उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाइए अपने मित्र, आपके वो द्वारकाधीश हैं, उनसे जाके मिलिए, कुछ हमें मदद हो जाएगी, तो कवियों ने कहा कि द्वारिका के नाथ हाथ समय के शीश पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा धोती फटी से लटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा द्वार खड़ो दिज देख ही रहे हो चकिसो वसुधा अभिरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप उन नाम सुदामा। शीश पगा, शीश पे पगड़ी नहीं है, जगातन में बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, प्रभु शीश पगा न जगातन में प्रभु जाने पगातन और उपाय उपाने की नहीं, पैरों में जूते नहीं है, शीश पगा न जगातन में प्रभु जाने को आई बसे के, पता नहीं किस गांव का है, आपसे तो आपका पूछ रहा है, धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी हुई है और उपाय उपान है, पैरों में जूते नहीं है, द्वार खड़ो दिज देख ही रहे हो और बाहर दरवाजे पर खड़ा होके चकिसो वसुधा अभिरामा आपके महल की शोभा को देख रहा है कि मेरा मित्र। पूछत दीन दयाल को धाम और कह रहा है कि जो दीन दयाल है, दीननाथ है, दीन बंधु है भगवान श्री कृष्ण, क्या ये उन्हीं का है घर महल, और अपना नाम बता दे, बतावत आप नाम सुदामा, कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा है और मैं दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आया हूं। अब ये बात द्वारपाल ने जाके अंदर कही तो भगवान भक्तवत्सल है, दीननाथ है, दीन बंधु है, जब ये बात जाके द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण, द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाय गहे पाए भेटे हरि अंक लपटाए दुख साने को नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि विप्र बोलो विपदा में मोही पहचाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाए गए, द्वारिका के नाथ भगवान श्री कृष्ण एकदम से धाए भागे हाथ जोड़ के और भेटे हरि अंक लपटाए दुख साने को, बहुत अपने मित्र को गले लगाया और गले लगाया और आंसू की धारा उनकी आंखों से, बेटे हरि अंक लपटाए दुख साने, उनके दुख का कोई सानी कोई, मतलब इतने दुखी हैं भगवान इस चीज को देख के, नैन दो जल भरी भगवान ने आंखें, दोनों आंखों में आंसू, पूछत कुशल हरि मुझे मेरे मित्र कैसे हो, और विप्र सुदामा कह रहे हैं कि विप्र बोलो विपदा में मोही पहचाने, इस विपदा में मुझे कौन पहचानता आपके अलावा, मेरा कोई नहीं है। जब किसी का कोई नहीं है, जब ये एहसास हमें हो जाए, तब हमें पता लगता है कि हमारे भगवान है। इससे पहले हम लोग तरह तरह की चीजें, तरह तरह की चीजों में सुख देखते हैं, तरह तरह की चीजों में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी आनंद की प्राप्ति नहीं है। इस भौतिक संसार का सुख ऐसे है जैसे किसी भूखे को आप शीशे में बहुत अच्छे अच्छे पकवानों का प्रतिबिंब दिखा दूं, तो कहेगा ये तुमने मुझे पकवान दिखा के मेरी भूख और बढ़ा दी, खाने को कुछ मिला नहीं, हाथ कुछ आया नहीं, तो ऐसे भजी लो संसार सुख है। तो ये जो यहां पे, और भगवान कृष्ण सुदामा से कहते हैं बात छिली बानी अजौन तजी तुम तेसे ही भाभी के तंदुल की ने, कि तुमने बगैर मुझे ऑफर किए, बगैर मुझे भेंट किए, जो भाभी के जो गुरुजी ने दिए थे खाने के लिए कुछ चिवड़ा वगैरह, वो तुमने अकेले खा लिया था। वो तुम्हारी आदत अभी भी नहीं गई कि तुमने भाभी ने जो तुम्हारी पत्नी ने जो मेरे लिए चिड़वा भेजा है वो अभी छुपा रहे हो, क्योंकि सुदामा इसलिए छिपा रहे थे, वो रानिया पूरा महल क्या दिखा है भाई, ये लेके आया हूँ चिपराइस तुम्हारे लिए। तो बहुत बहुत सकुचा रहे थे, लेकिन भगवान ने पकड़ ली और एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी, तो रुक्मिणी ने तीसरे में हाथ रोका कि आप कर सुदामा, आप भर सुदामा, कि आप अपनी पोजीशन सुदामा को। तो ये भगवान की ऑपुलेंस, भगवान का वैश्वर्य है कि वो रिनाउंस्ड है, उन्हें किसी संसार में, उन्हें पूरी दुनिया में किसी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं। और फिर ये बात जो मीट ईटिंग की, यहाँ पे बात आई जानवरों की बलि की बात आई, प्रभुपाद जी ने जब कृष्णा बुक का प्रीफेस लिखना शुरू किया तो पूरी कृष्णा बुक में मोस्ट लाइकली जहाँ तक है एक ही वर्ष शुरुआत में ही कोट किया, वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक प्रभुपाद जी ने निकाल के वहां लिखा भागवतम से, निर्वित्त से रूपगीय माना भवौषधि चौत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विजये तबिना पशुगना। निर्विद्ध तरसेर, जिसने मुक्ति पाली तृष्णा से, इस संसार के सुखों से जिसने निवृत्त, मेरे लिए नहीं है, मैं इस चीज में नहीं हूँ, ये संसार सब कुछ यहाँ मेरे हाथ से चीज निकलती जा रही, जैसे मुट्ठी में रेत निकलता चला जाता है, जीवन समाप्त हो रहा है। धन यौवन यू जाएंगे जा विधि उड़त कपूर, ये धन यौवन सब ऐसे हाथ से निकल जाएंगे जैसे कपूर उड़ जाता है, शीशे में रखा खोलो तो खाली। तो इस भाव को लेके यहां पे निवृत्त तर्श, जिन्होंने तृष्णा को छोड़ दिया मुक्ति में, उपगीय मानात भवौषधि श्रोत्र मनोविराद, तो उन्होंने जो है वो भगवान के, और ये जो भवौषधि भगवान के गुणों गुणानुवादात, अनुवाद भगवान के संबंध में जो भी साहित्य है उसको पढ़ना, उसको समझना, तो ये भव की औषधि है। औषधि का मतलब दवाई, भव का मतलब है बार बार इस संसार में आना। इस संसार में बार बार आना ये बहुत दुखों का कारण है, और ये जो भगवान के गुणानुवाद गुण, उनकी लीलाएं, उनके कार्यकलाप, उनका इस संसार में आना दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेद्य तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन। मेरे जन्म, मेरा आना, क्योंकि हम लोग आते हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहो उपपत्ति, हम आते हैं देव नेत्रेण, देवताओं की आंखें हमारे ऊपर गड़ी हुई हैं, ऐसे मान लो जैसे 12 कैमरे हमारे चारों तरफ चल रहे हो। तो कर्मणा, और जो भी हम काम करते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, पशुओं की बलि दी रिकॉर्ड हो गया, पशुओं का मांस खाया रिकॉर्ड हो गया, और जंतु देह उपपत्ति, इससे ही हमारा जन्म अगला मिलता है। अगले इस जीवन में हम लोग अपने अगले जीवन को कार्व आउट कर रहे हैं, जैसे कि कोई आपको पत्थर दिया जाए और आप शिल्पकार हैं तो छीनी हथौड़े से धीरे 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 आप अपना दूसरे बॉडी को तैयार कर लेते हैं, दूसरे शरीर को तैयार कर लेते हैं। तो भवौषधि छोत्र मनोविरामा का उत्तम श्लोक है गुणानुवादा बुमान भी ये तब बिना पशुगनात। तो ये जो बिना पशुगनात, कि जो इन भगवान की कथाओं में आनंद, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद को सबको तो मना किया कि भाई कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि इसमें सहजिया वगैरह के भाव लोग ले आते हैं, लेकिन अपने आप बड़े भगवान का परम जो उनका जो ऐश्वर्य है, जो उनका रास और वो सब लीलाएं हैं कृष्णा बुक का, वो चीज उन्होंने वहां रखी और बहुत जल्दी लिख दी वो चीज, ताकि वो शरीर पूरा करने से पहले ही उस काम को पूरा कर दें। लेकिन वार्निंग के तौर पे पहला ही श्लोक में ये बता दिया कि जिसके अंदर मीट ईटिंग और जो पशुओं की हत्या करता है उसकी समझ में नहीं आएगी, वो तो गलत समझेगा और गलत ही बताएगा और गलत ही प्रचार करेगा सब चीजों का, उसे पढ़नी नहीं चाहिए कृष्ण को बिना पशु ना, तब समझ में आ जाएगी। अगर वो पशुओं की हत्या नहीं करता तो पढ़ सकता है। तो यहां पे जैसे कि अब अगर हम ये कहें कि प्राउड दंभ से क्या होता है, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो तभी अपोलो 11 अपोलो यान जो है वो चंद्रमा पे लैंड करने की खबर अखबारों में आई, और प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी ने ये सब झूठ है, ऐसा कभी नहीं हुआ ना हो सकता। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा तक ने ये बात मान ली, उस वक्त पता नहीं कितने भक्त लोग प्रभुपाद जी से नाराज होकर इसको छोड़ के चले गए, बोले तो हो ही नहीं सकता, मैन लैंडेड ऑन मून, आदमी ने चांद पे कदम रखा और अगले ही दिन अखबार में देयर इज नो गॉड, कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है वो हम है। अमेरिका ने एक मिसाइल से एक उल्का का एक बहुत बड़ा वो आ रहा था तो एक्सपेरिमेंट किया कि उसके ऊपर स्ट्राइक किया और वो तमाम अखबारों में दिखाया, देखो अमेरिका ने उल्का के ऊपर मिसाइल छोड़ दी। फ्रांस ने एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ा, उसके ऊपर एक ऐसा शीशा लगाया कि रात में उन्होंने दिन निकाल दिया और कहा कि भगवान कुछ नहीं है, हम है जो कुछ है। ये भाव यही नाश का कारण है, यही नाश का कारण है। और अगले दिन अखबार में निकला कि प्रभुपाद जी ने पहले ही बता दिया कि ये सब फ्रॉड है, तुम्हारे पैसों को छीनने का तरीका है सरकार का। अगले अखबार में आया कि आदमी ने चांद पे कदम रखा और अब और आगे जाने की जरूरत है और आपके टैक्स 5% बढ़ा दिया जाएगा। तो लोग जिन्हें जो कहता अमेरिका जिंदाबाद, हम लोग इतने पावरफुल है, इतने अमीर हैं कि चांद पे पहुंच गए हैं, कोई भगवान नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, और इस दंभ में वो लोग इतना जानवरों, और वो क्या आप तो हिंदुस्तान में ही लोग तो अमेरिका को कहते थे कि गाय के मांस का प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर उत्पादक और बाहर भेजने के लिए अमेरिका, भारत का ही नाम बहुत आगे, क्योंकि लोगों में पता ही नहीं भारत में जल मिलने का क्या महत्व है। ये बुद्धा की कृष्णा की भूमि है, गौ हत्या से बड़ा क्या पाप हो सकता है। और आज हिंदुओं की शादियों में, सो कॉल्ड हिंदुओं की शादियों में एक शराब का और एक मांस का सेक्शन होता है। मैं अपने एक मुस्लिम फ्रेंड के यहाँ गया तो मैंने, भाई हम तो आपके यहाँ कुछ छू भी नहीं सकते क्योंकि ये तो सब चीज, बोले एक भी चीज नॉन वेज नहीं है। क्यों? बोले कि भाई हम लोग जो है वो जो प्रॉपर तरीके से हलाल का कभी महीने में एक आध बार वो कर गए, हम तो भाई तो सब बकवास है, हम ऐसे नहीं खाते। मेरा एक फ्रेंड था अमेरिका जब मैं PhD कर रहा था, खालिद सऊदी अरेबिया से, तो वो कहीं पार्टी में गए हम लोग, तो मैं तो कुछ खाते नहीं था, तो मैंने उससे कहा तुम तो खा सकते हो, तो बोला नहीं मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। मैंने क्यों? बोले ये सब तो हराम का है, हलाल खाते हम, हलाल यहां मिलता नहीं, सिर्फ खाते हम तो सब्जियां खाते हैं। तो उन लोगों में भी इतनी अकल है, लेकिन हिंदुओं को तो आप कुछ ही खिला दो और किसी वक्त खिला दो और कैसे भी खिला दो। तो ये जो आज हम लोगों के समाज का पतन है, इसको हमें रोकना है, इसका हमें उपाय निकालना है। और प्रभुपाद जी ने एक बार बताया कि कुछ हिंदू लोग महात्मा गांधी के पास गए और बोले कि महात्मा गांधी जी आप क्या कहेंगे, आप कहते हैं हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, एक आंख तो गाय का मांस खा रही है और दूसरी आंख गाय के मांस को मना कर रही है, आप क्या कहेंगे? तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं क्या कहूं, ये उनका धर्म है। क्या? प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के इतने बड़े नेता, उन्हें धर्म ही नहीं पता क्या है, और भगवद गीता पूरी ट्रांसलेट भी कर दी महात्मा गांधी ने, यही नहीं पता कि धर्म क्या है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म एक ही है, भगवान एक ही है, कंट्रोलर एक ही है, ईश्वर एक ल ईश्वर कृष्ण। और वो कह रहे हैं कि हिंदू गॉड मुस्लिम गॉड, ये महात्मा गांधी की अगल, ये प्रभुपाद जी ने बताया। तो भगवान एक है और प्रकृति के नियम बहुत टफ, इतने स्ट्रिंजेंट, इतने टफ है, इतने कठिन है प्रकृति के नियम कि अगर एक बच्चा भी आग में हाथ रख दे तो आग माफ नहीं करेगी, ये बच्चा है छोड़ दो, हाथ जल जाए। मुझे याद है करीब 25-30 साल पहले जब मेरी भांजी की शादी देहरादून में थी, तो वहाँ हम लोग पहुँचे तो मैंने अपने गोद से अपने पुत्र को नीचे जमीन पर, तो 2 साल का था वो, तो उसने मोटरसाइकिल का छूते छूते साइलेंसर छू दिया, और साइलेंसर पूरा गर्म, हाथ रखते ही हाथ चले। अब पूरी शादी में 2 घंटे तक वो रोता ही रहा। तो बच्चे को भी माफ नहीं है कि भाई बच्चा, तो ऐसे ही हर कार्य का परिणाम भुगतना होगा, हर कार्य के परिणाम के थ्रू हमें जाना होगा। बस जो लोग भगवान के नाम में हैं, जो लोग भगवान की सेवा पूजा में हैं, भगवान की कथा, भगवान के गुणगान, भगवान की सेवा में हैं, तो उनको कर्म का फल बहुत एडजस्ट करके मिलेगा। जैसे अगर कोई बच्चा सड़क पे चलते हुए किसी को पत्थर मार दे तो वो आके मारेगा चाटा, और आंख फूटे के कान फूटे वो देखेगा नहीं, ये तो माया होगी। और जो योग माया, यानी कि अगर वही बच्चा वही पत्थर उठा के पिताजी को मार दे तो वो योग माया की तरह काम करेंगे, उसको इस तरह से हर्ट करेंगे जो बच्चे को चोट नहीं पहुंचे, ऐसी चोट नहीं पहुंचेगी जिससे वो उभर ना सके। तो ये भगवान का, ये जो भगवान के भक्त हैं उनको जो है भगवान की माया नहीं, यानी कि देवी यश गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव यह प्रपद्यन्ते मामे ताम तरन्ते। देवी ऐसा गुण भी मेरी गुणमयी, 3 गुण हैं, रजोगुण सतगुण तमोगुण, ये 3 गुणों से भरी हुई मेरी माया है, दुरत्तया इसको पार करना बहुत मुश्किल है, मामेव यह प्रपद्यन्ते जिन्होंने मेरी शरण ले ली, जिन्होंने मेरे नाम की शरण ले ली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जिन्होंने मेरे नाम की शरण ले ली उनको ये मेरी माया व्याप्त नहीं कर दूंगी, मेरी माया को टच नहीं करती। और वेस्टर्न कंट्रीज में लोग, जो कि यहाँ पे इसमें प्रपर्ट में ट्रांसलेशन में भी आया कि दो तीन तरीके से लोग जानवरों की हत्या करते हैं, 2-3 इंटेंशन के साथ में। कुछ लोग तो शिकार पे जाते हैं, अमेरिका में बहुत फैशन है, एक स्टोर है उसका नाम है काबेला, और वो काबेला का स्टोर इतना बड़ा है अंदर से कैसा लगता है जैसे कोई किसी बहुत बड़े महल में आ गए हो, और वहाँ तरह तरह की एग्जीबिशंस वो लगाते हैं कि बंदूक बिकती है वहाँ पे, कि हिरण के कैसे वो शूटिंग की जाए तो शूटिंग, तीर कमान मिलते हैं बड़े बड़े टेक्निकल, वो ऐसे तीर जो तीर लगे तो जानवर ऐसे, और मछलियों को पकड़ने के लिए 1000 तरीके की रॉड और कांटे वहाँ, और उसके तरीके उसमें ये सब। और मैंने देखा, जैसे मैं वहाँ जब नौकरी करता था तो मेरे साथ में एक लेडी थी, नाम था शेरल हाव, तो शेरल जो है वो उनके प्रेग्नेंट हुई, एक बच्ची हुई, वो 1.5 साल की होगी। और एक दिन वो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए वो जाते हैं नदी में, तो एक वेडर्स होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक पूरा, पानी में खड़े हो तो कपड़े गीले नहीं होते, तो उसको वेडर्स कहते हैं। तो वो लाई हुई थी, तो हमने कहा बाप आज कहाँ जा रही है, कि आज मैंने अपनी लड़की को बेबी सिटिंग में भेजा है, मतलब के डे केयर में, और मैंने कहा आप कहाँ जा रही है, कि मैं फिशिंग पे जा रही हूँ। और फिशिंग पे क्या है, जैसे हम कभी कभी नदी के किनारे जपवाक पे जाते थे तो देखा लोग नदी में खड़े हुए हैं वेडर पहन के ठंडे पानी में, और इतना बड़ा रॉड लेके उसमें ऐसे फेंक के और खड़े हुए घंटों, और कभी एक मछली पकड़ में आई और वो मछली को क्योंकि शौक ये एक वहां कल्चर बन गया, और कई बार एक बड़ी सी मछली पकड़ में आ गई तो उस बड़ी सी मछली को लेके खड़े हुए हैं, दांत निकाल रहे हैं और एक फोटो खींचा वे फेसबुक पर रख दिया। ऐसे ही लोग हंटिंग पे जाते हैं, हिरण का शिकार किया, हिरण को मार के हिरण बैठा हुआ है बगल में खड़े हुए हैं, बंदूक हाथ में, एक फोटो खिंचाया फेसबुक पर रख दिया। मृगराजी का भी यही हाल था, नारद मुनि जब उनसे मिले तो वो जानवरों की हत्या करते थे, उन्हें हाफ किल करके छोड़ देते थे, तो नारद मुनि उनको बताया कि ये पाप है, इससे तुम्हें रिएक्शन मिलेगी, तो वो समझे और तो उन्हें भगवान के नाम की महिमा बताई। तो ये जो जानवरों की हत्या करना शौक में, जैसे कि एक बार हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में गए, ग्रैंड कुली डैम था वहां वाशिंगटन में, तो कॉन्फ्रेंस में तो वहां डैम पे जब घूमने गए तो एक लड़का डैम के ऊपर कहीं खड़ा होकर नीचे डाल के काटा और वो मछली पकड़, और तभी देखा है कि उसने घुमाना शुरू किया मछली पकड़ में भी आके निकाली मछली और कांटे को निकाला और फेंक दी वापस। तो हमने कहे क्या क्या किया भाई तुमने, मैंने पूछ रहा भाई कि मतलब लोग पकड़ते भी पकड़ोगे मार के खाओगे, तो नहीं नहीं कौन साफ करेगा इसे, कौन धोएगा इसे, कैसे निकालूंगा मांस को, उसे वापस फेंक दिया और बस घंटों खड़े टाइम किल कर रहे, टाइम खराब, घंटों खड़े हो गए, ऐसी पूरी की पूरी करोड़ों करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री इसी काम की है, जानवरों के शिकार, जानवरों की हत्या, और स्टोरों में मतलब मांस ही मांस चारों तरफ। तो कितना पाप और कितना जघन्य ये सब चीजें हैं जिसके पीछे लोग अपने कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे कि बाइबिल में भी लिखा है दाउ शैल नॉट किल, तो उन्होंने किल का मतलब ये है कि किसी को भी आप मार नहीं सकते, तो उन्होंने एक ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबिल का जो ज्यूज लोग भी फॉलो करते थे, क्रिश्चियंस लोग भी फॉलो करते थे, और एक न्यू टेस्टामेंट बनाया, बाइबिल को रिवाइज कर दी। रिवाइज करके क्या करा, उसमें कॉन्फ्रेंस करी, कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये जो दाउ शैल नॉट किल ये टू मच, बहुत ज्यादा ही कुछ लिख दिया जिसने भी लिखा, किल किसी को भी नहीं मार सकते। तो उन्होंने कहा दाउ शैल नॉट मर्डर, बस आदमी के अलावा सबको मार सकते हो, क्योंकि मर्डर का शब्द जो है वो सिर्फ आदमी के लिए एप्लीकेबल है, आदमी के लिए चलता, तो दाउ शैल नॉट किल को दाउ शैल नॉट मर्डर कर दिया कि अब सब कुछ मार के खा सकते हो, कंसेशन दे दिया। तो ये मीटिंग करके वहां पे इस तरह से, और वो लोग अब जैसे कहते हैं वो अमेरिका के लोग हमारे एक साथ में पॉल कैसलिन थे, तो वो चाइना गए घूमने, तो वहां मेज पे सॉस रखा हुआ था, तो उन्होंने पूछा भाई ये लाल लाल सॉस कैसा, कि नहीं नहीं ये सॉस नहीं है, बत्तख का ब्लड है चाइना। तो पॉल कैसलिन कह रहे हैं देखो चाइनीज लोग कितने खराब हैं, बत्तख का ब्लड खाते हैं, तुम भी तो गाय का मांस खाते हो, तुम क्या कोई बढ़िया हो, तो कोई भी मांस को खाएगा रिएक्शन पाए, कोई भी इस तरह से जानवरों को दुख देगा, क्योंकि जानवरों का भगवान है, उनकी देखरेख वो करते हैं, जो भी जीव हत्या करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। और एक बार मेरे से ऑफिस में मैं बातचीत कर रहा था, तो अमेरिका में एक जोक है होली का, मतलब जैसे हम लोग तो हिंदुओं के एक हिसाब से इस तरह से एक जोक बनाया हुआ है कि मतलब गाय को टच मत करना, मतलब अगर किसी चीज को वो लोग कहते हैं कि भाई ये काम नहीं कर सकते, इसका मतलब होली गाओ ये तुम्हें मना है। जैसे हमारे धर्म में गाय की हत्या, गाय का मांस, इस तरह से गाय का वध या गाय को बलि में चढ़ाने मना है। और पहले समय में जो लोग यज्ञ वगैरह करते थे और यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, तो वो लोग मंत्रों की पावर को टेस्ट करके और जानवरों को दूसरा नया जीवन देते थे। लेकिन आगे आगे समय बदला, ना वो ब्राह्मण रहे ना वो मंत्र के उच्चारण रहे, लेकिन वो यज्ञ चला हुआ आ रहा है, और वो लोग अब जानवर की हत्या करके उस मांस को खाने लगे। तो एक बार मुझसे ऐसी होलिकाओं की बात हो रही थी, तो मैंने यही कहा कि जो गाय है हमारे लिए गाऊ होली है, पवित्र है, हम उसे टच नहीं करते, इसके पीछे कोई सेंटिमेंट नहीं है, हम भावनात्मक रूप से इस बात को नहीं कहते। हमारी सात माएं हैं, राजपत्नी का गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, धरती माँ, अपनी माँ, गाय माँ, ये सब जो है नर्स, अर्थ, मदर अर्थ, तो ये सात माएं हैं। अब बताओ कौन है ऐसा जिसकी ये सात माएं नहीं हैं? अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, सात माएं तो सबकी हैं। और फिर कौन ऐसा है जब बचपन में माँ का दूध नहीं था तो सब लोगों ने गाय का दूध पिया, और उससे, क्योंकि गाय का दूध ही एकमात्र ऐसा दूध है जो माँ के दूध से मैच करता है। कौन अपनी माँ की हत्या करके उसका मांस खाएगा, उससे बुरा कौन हो सकता है? नराधम, नीच, उसे भी नीच। तो सब, और ये बात मैंने कह भी दी सबके सामने, तो वो लोग मतलब बोलेंगे कि हम लोग, मैंने यस, आप लोग वाकई उसी कैटेगरी में मां का मांस खा रहे हैं। तो मैंने कहा इसको अगर अगर आपको बहुत ही, जैसे कि हर धर्म में, हर उसमें रिलीजन में इस तरह का प्रोविजन है, मार्कंडेय पुराण में यह काली की पूजा करने वालों के लिए कंसेशन करा, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का मतलब है रेगुलेशन। जैसे कि कोई आदमी अगर रोज दो डिब्बी सिगरेट पीता है तो डॉक्टर के पास अगर वो जाए, डॉक्टर उसको कहता है कि भाई आप सिगरेट मत पिया करें, लेकिन चूंकि अभी आप दो डिब्बी से चले हुए आ रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक सुबह पिए, एक दोपहर में खाने के बाद, एक शाम को खाने के बाद। अब डॉक्टर ये बात कह रहा था कमरे में, तभी कोई आया, बोले क्या डॉक्टर साहब आप सिगरेट पीने के लिए कह रहे हो? लेकिन उस बंदे को यह मालूम नहीं जो अभी अभी आया कि ये दो डिब्बी से तीन सिगरेट पे ला रहा है इसको पहले। तो ऐसे ही वेदों में भी, मार्कंडेय पुराण में वेद व्यास जी ने इस तरह से कंसेशन दिया, इसलिए नहीं कि उस अब उस मार्कंडेय पुराण को लेके भागे चले जाओ और बस आपके पास तो लाइसेंस मिल गया खाने का मारने का और स्लॉटर हाउस खोल दो, इसलिए नहीं, रेगुलेट करने। ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जन्म का मतलब है कंट्रोल, मनुष्य जन्म का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण, मनुष्य जन्म का मतलब है रेगुलेशन। जैसे कि मैं एक बार डिक्शनरी में प्रोस्टिट्यूशन का मतलब देख रहा था, तो प्रोस्टिट्यूशन का, वैश्यावृत्ति का मतलब लिखा था इम्प्रॉपर यूज ऑफ जेनिटल्स, इम्प्रॉपर यूज। प्रॉपर यूज क्या है कि भाई संतानोपत्ति, संसार को चलाना अपने परिवार में, लेजिटिमेट लीगल वाइफ के साथ में, इस तरह से बच्चों के लिए, तो ये प्रोस्टिट्यूशन ऑफ जेनिटल्स, गुप्तांगों का व्याभिचार। लेकिन जीव का भी व्याभिचार है, जो जीव भगवान का नाम नहीं लेती, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, वो जीव व्याभिचारी है। जो मनुष्य है, मनुष्य जन्म में अपने जन्म को सार्थक करने के लिए भगवान का नाम नहीं लेता, वो व्याभिचारी है। क्योंकि ये शरीर, ये बॉडी, ये जो भी हमें मिला, ये भगवान की सेवा के लिए मिला, और अगर हमने इसका उपयोग, दुरुपयोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति में किया तो ये हमारे लिए जन्म सार्थक नहीं है, जन्म निरर्थक है। जन्म का हमें, इस मनुष्य जन्म का, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार, तरुवर सो पत्ता गिरे बोर न लागे। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इमम देहा सुलभम सुकल्पम सुदुर्लभम गुरु कर्ण धारम। ये देह जो है, तीन वर्ड यूज किए, सुलभम सुकल्पम सुदुर्लभम। सुलभम हमें मिल गई मनुष्य की देह, हमने कुछ किया, कुछ याद है? कुछ भी नहीं। सुकल्पम कितने तरीके से बनाई हुई है, कान वान सब प्रॉपरली सिचुएटेड है, भगवान ने अपने ही रूप को हमें दिया। और सुदुर्लभम, अब ये पता नहीं कि जन्म छूटा अगले जन्म में कौन सी योनि की प्राप्ति होगी, क्या शरीर मिलेगा, कुछ पता नहीं। गुरु कर्णधारम, और गुरु जो है वो इस शरीर की नामक नौका के कैप्टन गुरु हैं, और वेदों की जो मंत्रों की और ज्ञान की फेवरेबल हवाएं हैं वो हमारे, हम अपने आप के जो हमारे पाल हैं, जो पर्दे हैं नौका के, वो इस तरह से करें कि वो वेदों की हवा से हमें आगे बढ़ा के ले जाएं और इस मनुष्य जन्म से हमें छोड़ के जब दिव्य शरीर अपना जो है वो प्राप्त हो, ये भागवतम में कहा गया है। और एक्चुअली क्या है कि कर्म के बंधन को समझना जरूरी है। भगवत गीता में तीसरे चैप्टर के पांचवें श्लोक में बताया, नहीं कशि क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म अकृत, एक भी क्षण तुम खाली नहीं बैठ कार्य थे, कि आदमी को कर्म करना पड़ेगा, गुण कर्म से जो भी वो कर्म ले गुण लेके आया है उसको कर्म में लगना है, एक भी क्षण वो खाली नहीं बैठ सकता। लेकिन तीसरे अध्याय के ही नवे श्लोक में बताया, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधन, कि अगर तुमने भगवान कृष्णा विष्णु यज्ञ के तृप्ति, उनकी उनके सेवा के अलावा यज्ञार्थात अर्थात उसके लिए काम करना है, अन्यत्र अगर कहीं और कर दिया, लोको यम कर्म बंधन, कर्म का बंधन में फंसे। और तदर्थम कर्म कौन थे, और उनके लिए काम किया, मुक्त संग समाचार। प्रभुपाद जी ने कहा दो बातें कही, एक तो माया के ऊपर और एक डिवोशनल सर्विस के ऊपर। किसे प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी हम लोग माया में चले जाते हैं कभी कभी, प्रभुपाद जी अगर कभी कभी नहीं हमेशा माया में ही रहते हो, और कभी कभी तुम माया से थोड़ा बाहर आ जाते हो भक्तों के संग में। फिर ये बात आई कि हमें हमारा दिव्य शरीर स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी मरने के बाद, हम भगवत धाम को जाएंगे, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि नहीं, तुम लोग यहीं जब भी तुम सेवा में लगते हो, जब भी तुम भगवान की भक्ति करते हो शुद्ध भाव से करते हो, तो यहीं तुम्हें वो स्पिरिचुअल शरीर तुम्हारा यहीं है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप अगर किसी चीज को कोई शुद्ध भक्त छूता है तो क्या वो स्पिरिचुअल हो जाती है? प्रभुपाद जी ने कहा यस। प्रभुपाद जी ने फिर कहा कि अगर ये दरवाजा खोलते हुए नॉब को आपने ऐसे घुमाया तो क्या ये स्पिरिचुअल हो गई? प्रभुपाद जी ने कहा एज लॉन्ग एज आई एम टचिंग इट, जितने देर तक मैं छू रहा हूं मेरे हाथ हटने के बाद नहीं। ऐसे ही हम लोग ये जो सेवा में लगे रहते हैं, इस सेवा का प्रभाव है कि हमें उस चीज का आभास यहां हो जाता है नाम में, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम। तो ये स्थितियां, ये स्टेजेस हैं धीरे धीरे। तो और जनरली लोके बविया आमिष मध्य सेवा नित्य ही जंतुर नहीं तत्र प्रचोदनात्, जो हमारे शास्त्र हैं उनमें बहुत ज्यादा इस बात का वर्णन विस्तार से नहीं किया गया, शुद्ध अच्छे पुराणों में अच्छे ग्रंथों में, कि लोके बविया आमिष मध्य सेवा, जीव जो नित्य ही जंतुर, जंतु जो है वो बविया सेक्स लाइफ, आमिष मीट ईटिंग, मध्य सेवा ड्रिंकिंग, जंतु हमेशा से इन चीजों पे गलत चीजों पे ध्यान जाता है, इसीलिए इसका बहुत शास्त्रों में डिटेल वो नहीं है इसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें मना किया, कंट्रोल, ह्यूमन लाइफ मींस कंट्रोल, ह्यूमन लाइफ मींस रेगुलेशन, मनुष्य के शरीर में रोकना है। कोई कहते हैं भाई जस्ट डू इट, एक अमेरिका में एक स्टिकर आता है जस्ट डू इट नो फियर, दूसरा स्टिकर, दो स्टिकर बहुत फेमस है अमेरिका में, जस्ट डू इट एंड नो फियर। जस्ट डू इट का मतलब है जो करना करके एक तरफ करो, बस जो बैग बोरो स्टील, खाओ पियो मजा कर। और नो फियर, नो फियर क्यों लिखा मालूम है? उन्हें पता है कि जस्ट डू इट, कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगी, तो फिर डरो मत। नो फियर. लेकिन हमारा नो फियर कहां से है? 1866 मां शुचा, डरो मत, भगवान कहते हैं. क्यों मत डरो? क्योंकि तुमने मुझे सरेंडर कर दिया. तो हम लोग भगवान की शरण में, भगवान के नाम में आनंद लेते हैं. और जैसे कि ये मांस खाने का लोग करते हैं, तो प्रकृति के नियम है, लॉज ऑफ नेचर, वहां से रिएक्शन आती है. रिएक्शन कैसे आती है? जैसे इंग्लैंड में करीब 1996 या 97 की बात है, तो तब मैं अमेरिका में ही था, तो वहां एक मैड काउ नाम की डिजीज हुई. मैड काउ कहां से हुई? कि उन लोगों ने जो गाय का खाना था, चारा था, उसके अंदर शीप का ब्रेन मिला दिया. उनका दिमाग देखो कि गाय एक वेजिटेरियन एनिमल है, उसको शीप का ब्रेन खिला दिया. तो शीप का ब्रेन खाने से गाय के मांस में एक ऐसा प्रोटीन जनरेट हुआ कि जो भी उस गाय के मांस को खाएगा उसका ब्रेन स्पंज जैसा हो जाएगा. उसको कहते थे CJD नाम की डिजीज थी, और उसको मैड काउ डिजीज कहा गया कि आदमी पागल हो गया, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा. और उस प्रोटीन का, जैसे किसी को कुत्ता काट ले, तो कुत्ते के काटने का अगर वो इंजेक्शन ना लगवाए तो रेबीज हो जाती है. और रेबीज ऐसा नहीं होता कि आज कुत्ते ने काटा कल रेबीज हो गई, इंजेक्शन नहीं लगवाया. आज कुत्ते ने काटा बचा 20 साल बाद रेबीज हो गई, बस अब इंजेक्शन नहीं लगवाया. ये लोग इंजेक्शन लगवाते हैं कि कभी ऐसे ना हो जाए, हाइड्रोफोबिया ना हो जाए. तो ऐसे ही इस प्रोटीन का इंक्यूबेशन पीरियड 10-15 साल है. और पता लगा कि अमेरिका के अंदर भी ये डिजीज थी. अब सारे लोग जिन्होंने गाय का मांस खाया था, ऐसे हो गया, मेरा क्या होगा? और ये भी नहीं कह सकते कि कल कोई कुछ हो जाएगा, मेरा 10 साल बाद ब्रेन स्पंज का हो गया खत्म. तो कोई ताज्जुब नहीं है अगर आप 5-10 साल बाद सुने कि अमेरिका के अंदर 50 लाख लोग मेड का हो गई सडनली. उनको तो इंक्यूबेशन पीरियड का पता नहीं किसी को, कितने दिनों में वो प्रोटीन में इस तरह चीज मैच्योर होगी वो कीड़ा मेड का हो. तो प्रकृति ने रिएक्ट करा कि भाई गाय को आप मारे खा रहे हैं, लो पकड़ो. मैड डियर, डियर के अंदर भी वही चीज निकल आई. उसके बाद बर्ड फ्लू, जो चिकन खाते थे बर्ड फ्लू आ गए, लोग अंडे चिकन सब बंद कर गए. फिर स्वाइन फ्लू, जो सुअर खाते थे उसके लिए ये स्वाइन वाला फ्लू आ गया. तो प्रकृति रिएक्ट करती है, भगवान रिएक्ट करते हैं जानवरों के लिए, सपोर्ट करके उनके 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 प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए भगवान कार्य करते हैं. जो हमारी मदर नेचर है वो इस तरह से. तो ये प्रकृति के नियम हैं. जो लोग नियम के अनुसार चलते हैं, जो धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म परायण है, वो लोग सुखी रहते हैं. जैसे कि अगर तुम लोग कार को बहुत तेज चला रहे हो और बहुत तेज जा रहे हो, इधर मोड़ उधर मोड़, तो यहां तो इतना नहीं है, लेकिन अमेरिका में तो वो कहीं ना कहीं रहते ही हैं पुलिस वाले लोग, तो एकदम से तुम्हारे, तुम अपने रियर व्यू मिरर में, पीछे देखने वाले शीशे में देखते रहते हो कि पीछे पुलिस की गाड़ी की फ्लैशिंग तो नहीं हो रही मेरे पीछे, तो डर लगा रहता है. तो जो लोग तेज गाड़ी चलाते हैं, जो नियम का उल्लंघन करते हैं, रेड लाइट को पार करते हैं, पीछे उन्हें पुलिस का डर है. लेकिन जो लोग धर्म परायण है, जो लोग शास्त्र सम्मत जीवन जीते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है. भक्तों को कोई डर नहीं है, भक्तों को कोई कुंठा नहीं है, भक्तों को कोई इच्छा नहीं है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो किसी का कोई प्रश्न, कोई पॉइंट? हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद की जय.